सुन रहे हैं अरपा रेडियो, प्रस्तुत है कार्यक्रम भेंट मुलाकात। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं प्रयास एडवर्टाइजिंग एजेंसी की संचालिका ममता पांडे से, जिन्होंने मौली धागे से राखी को जोड़ते हुए रिश्तों और परंपराओं की बात बताई। इनसे बात की है संज्ञा टंडन ने।
एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं प्रयास एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ओनर श्रीमती ममता पांडे। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से ये एक विशेष कार्य में लगी हुई हैं और ये विशेष कार्य कर रही हैं भारतीय परंपरा के अनुसार अभिमंत्रित मौली धागे के द्वारा बनाई हुई राखियों को सिखाने और बढ़ावा देने का काम। सुनने में ही बड़ी अच्छी सी लगी ये बात, तो चलिए करते हैं हम इस संदर्भ में इन्हीं से विस्तृत बात। स्वागत है ममता जी आपका हमारे स्टूडियो में।
आपको नमस्ते, आपके सुनने वाले श्रोताओं को ढेर सारा प्यार और नमस्ते।
ममता जी आप सोशल वर्कर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपने देश की धर्म संस्कृति मान्यताओं परंपराओं को मानते हुए बहुत चलती हैं। जिन लोगों ने आपको देखा है, आपसे रूबरू मिले हैं, वो लोग जानते हैं कि आजकल के जमाने में जिस तरह के गेटअप में आप रहती हैं, सीधे पल्ले की हमेशा साड़ी में रहेंगी, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, और उस परंपरा को आप आज भी निभा रही हैं फैशन को एक तरफ छोड़ करके, तो ऐसे में आपके दिमाग में ये वाली कल्पना कब से आई और लोगों तक पहुंचाने का आपने कैसे सोचा कि मौली जो एक धागा है उसको राखी के साथ जोड़ने का विचार आपके मन में कैसे आया?
मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि रही बात आप जो कह रही थी कि मैं हमेशा सीधे पल्ले में रहती हूँ, तो एक्चुअली क्या है, लोग अपनी परंपराओं और कल्चर को मॉडर्निटी के नाम पर छोड़ते जा रहे हैं, स्पेशली महिलाएं। देखिए पुरुषों के लिए तो परिधानों में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन महिलाओं में बहुत ज्यादा वैरायटी है, क्योंकि महिलाएं जो है अपनी संस्कृति के साथ साथ वो वेस्टर्न जो संस्कृति है आज की डेट में वो उसको देखकर वो उसको एडॉप्ट कर रही हैं। हालांकि ये भी सही है कि जो हमारे यहाँ आजकल के जो सास बहू वाले सीरियल्स चल रहे हैं उसमें इन परंपराओं को निभाते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन लोग उसको एडॉप्ट नहीं करते हैं, जो उसमें मॉडर्निटी वाली चीज रहेगी उसको तुरंत एडॉप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, हमारे जो पूर्वज हैं वो यूपी से आए हुए हैं, और यूपी में आज भी जो है वो कल्चर है कि जो यदि आप पुरानी महिलाओं को, इवन छत्तीसगढ़ में अभी आप पुरानी महिलाओं को देखेंगी तो वो सीधे पल्ले में ही साड़ी पहनती हैं, और वो सीधे पल्ले वाला जो कल्चर है वो मैंने अपनी माँ से सीखा। हमारे बाबूजी भी जो थे वो धोती और कुर्ता ही पहनते थे, और वो बीएड कॉलेज के प्रोफेसर थे और वो रिटायर हो चुके थे। तो मैंने एक दिन देखा कि उस समय देवगौड़ा जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। अच्छा। तो जो भी साउथ से आता था वो कभी अपना गेटअप किसी भी रूप में उन्होंने चेंज नहीं किया। यदि वो लुंगी पहनते हैं तो देवियर लुंगी, उन्होंने उसको एक सम्मान दिलवाया कि नहीं मैं भले प्राइम मिनिस्टर हूँ लेकिन मैं वो लुंगी ही पहनूंगा, उसको चेंज नहीं करूंगा। तो हम जो हैं वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? आज मैं लोगों को, सुनने वालों को ये बताना चाहूंगी कि आज भी देखिए जो साउथ के लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं हर मामले में, चाहे वो ट्रेडिशन को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे परंपराओं को लेकर हो, चाहे जो भी संस्कृति हो, वो देखिए अपनी संस्कृति को बहुत ज्यादा ओपन करके बहुत बढ़ाते हैं। आप पंजाबियों को देख लीजिए, वो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़े से हैं उनमें ये भावना कब आई वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कर दिया अपनी परंपराओं को। इस वजह से आज हमारे देश में जो मिला जुला कल्चर है वो हर जगह देखने को मिल जाता है। अब बात आई आपके राखी वाले उसकी, तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता था कि आज के समय में जो हमारी युवा जनरेशन है वो मोबाइल और टीवी एंड गैजेट्स में इतनी ज्यादा फंसी हुई है कि कहीं ना कहीं वो हमारी जो परंपरा है मौली धागा को बांधने की, उसके क्या फायदे हैं, उसे क्यों बांधना चाहिए और इसके बांधने के बाद इसको हमें किस तरह विसर्जित करना चाहिए, वो उनके अंदर इस चीज को लेकर कोई भी अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि यदि हम किसी युवा को यदि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम डालकर परोस दें तो वो उसको बहुत जल्दी एडॉप्ट करते हैं और साथ ही साथ वो अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश भी करेंगे। ये मेरा एक उद्देश्य था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं इसे राखी के साथ यदि जोड़कर बताती हूँ और उससे बनी हुई राखी मैं लोगों तक यदि इसको पहुंचा सकती हूँ, बच्चियों को सिखाती हूँ, महिलाओं को सिखाती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो राखी के रूप में ही सही लेकिन इसको पहनेंगे और बांधेंगे। तो इसके गुणों को देखते हुए मुझे ये लगा कि यदि हम इसको राखी के रूप में लेकर आए तो डेफिनेटली जो बच्चियां हैं वो भी इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगी, खुद भी बांधेंगी, अपने भाइयों को बांधेंगी और दूसरे भी लोगों को बताएंगी कि हमने मौली धागे से बनी हुई राखी बनाई है, पहनी है और भाई को पहनाई है। क्योंकि कुछ भी चीज जो है वो देखकर ही आदमी सीखता है। तो इस चीज को लेकर मुझे लगा कि मुझे इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए और मैंने 4 साल पहले जो है मैंने इसकी शुरुआत की थी कि मौली धागे से बनी हुई राखियों को मैं बच्चियों को जाकर मैंने सिखाया और उसको फिर मैंने वहीं से एक बार प्रमोट करना शुरू किया और 3 साल तक जो है मैंने बच्चों को उस चीज को सिखाया। इस साल चूंकि लॉकडाउन लग गया तो मुझे वैसे सिखाने का मौका नहीं मिला, तो मैंने जूम के थ्रू मैंने एक अभी 10 दिन पहले एक मीटिंग रखी थी जिसमें मैंने लगभग 100 से 150 महिलाओं को मैंने जूम के थ्रू सिखाया कि किस तरह, हाँ एक शुरुआत की मैंने कि मुझे लगा भाई जूम में बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे आई थिंक तो ऐसे जोड़ के बच्चियों को यदि मैं सिखा पाई तो ये उनके लिए और अभी के समय में तो ये बहुत जरूरी है। और आज के समय में जबकि बिलासपुर में भी लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन है चल रहा है, जहां जहां वहां तो बाजार से राखी ले पाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि महिलाएं बच्चियां घर में खुद मौली धागे से राखी बनाकर पहनेंगी और भाइयों को पहनाएंगी तो उसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव असर जरूर आएगा सामने, ऐसा महसूस।
अच्छा ममता जी, जैसे आपने कहा 4 साल से आप बच्चियों को सिखा रही हैं, तो जो बच्चियों ने 4 साल पहले आपसे सीखा था क्या आप उनके कॉन्टेक्ट में हैं कि वो लगातार उस चीज को बढ़ा रही हैं, हर साल वो लोग बना रही हैं और लोगों को सिखा रही हैं कि नहीं?
देखिए मैं एक्चुअली स्कूलों में जाकर सिखाती हूँ।
अच्छा।
और हर साल क्या होता है स्कूलों में राखी कॉम्पिटिशन जरूर होता है बच्चियों के बीच में कराया जाता है। जिन स्कूलों में मैंने प्रेजेंटेशन दिया था वहां से मैंने उनके टीचरों से पूछा, बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं मौली धागे के प्रति बच्चों का अवेयरनेस भी है और बच्चियां उसी से ही राखियां जो हैं वो बना रही हैं अभी।
अच्छा, बिलासपुर के आगे भी आपने और जगह के लोगों को जूम में तो अभी आप सिखा रही होंगी बाहर के लोगों को भी, लेकिन अभी तक पिछले 3 सालों में क्या बिलासपुर के बाहर भी लोगों को इस तरह अवेयर किया आपने?
जी जी, मैं एक्चुअली पिछले 2 साल जो थे मेरे इस 3-4 सालों के पीरियड में, 4 साल के पीरियड में 2 साल मैं रायपुर में भी रही हूँ और बिलासपुर में आती जाती रही हूँ। तो मुझे रायपुर में भी स्कूल हुए और गर्ल्स कॉलेज था, मैं डिग्री गर्ल्स कॉलेज जहाँ से मैं ऑलरेडी पढ़ी हुई थी मैंने वहां पे भी जाकर अपना प्रेजेंटेशन दिया और बच्चियों को मैंने वहां पर भी सिखाया और दे आर वेरी हाईली इंटरेस्टेड कि ये ऐसी भी कोई चीज है जिसे हम बना के मतलब इतनी सुंदर राखियां बना सकते हैं और पहन भी सकते हैं। तो ये चीज जो है मैंने रायपुर में भी किया है।
तो जब आप प्रेजेंटेशन देती हैं इन लोगों को बच्चियों को तो उसके पहले उन लोगों को अवेयर करने के लिए मौली धागे के संस्कारों की और परंपराओं से जुड़ी हुई बातें भी उनको बताती होंगी?
जी जी बिल्कुल,
वो बातें हम भी चाहेंगे कि हमारे श्रोता सुने जिससे कि वो लोग भी आगे इस चीज को बढ़ाएं और राखी के महत्व को रिश्तों के साथ जोड़ना भी समझें। इस समय लोग चाइनीज राखियां नहीं लेंगे तो कसमें खा रहे हैं, लेकिन
जी जी।
उसका एक अल्टरनेटिव हमारी संस्कार और रिश्तों और परंपराओं के साथ जोड़ने का ये एक जो तरीका है ये लोगों तक सही रूप में पहुंचे अवेयरनेस के साथ, ये हम चाहते हैं।
एक्चुअली आपको भी पता है कि हिंदू संस्कृति में मौली धागा धर्म आध्यात्म और स्वास्थ्य के महत्व को जो है वो पहचानते थे पहले के लोग, इसीलिए जो है उन्होंने एक ऐसा पवित्र धागा बनाया जिसे किसी भी कोई भी मुख्य त्योहार हो या आपके घर में एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना हो, उसके पहले पंडित जी उसे बांधकर एक मंत्र से आपको बांध देते हैं जिससे आपकी शुद्धि जो है वो कंफर्म हो जाती है कि आप अब शुद्ध हो गए हैं। और दूसरा, साथ ही साथ जब आप इसको बांधते हैं तो इसका एक चिकित्सकीय पक्ष है जिसको पुराने जमाने के लोग हमसे ज्यादा बेहतर समझते थे, वो ये कि जब हम एक्चुअली मैं आपको मौली धागे के बारे में बता दूं कि जो मौली धागा होता है वो शुद्ध कपास या सूत जो होता है उससे बना होता है, बस उसमें कलर कर दिया जाता है और धागे को पिरो दिया जाता है, ये होता है। तो जब हम मौली धागा बांधते हैं तो आपने देखा होगा कि मौली धागा जो होता है वो चूंकि सूत या कपास का होता है तो वो तुरंत भीगने के बाद जब आप नेक्स्ट डे उसको बांधने के बाद नहाते हैं तो वो भीग जाता है और ढीला हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे सूख जाता है मौली धागा तो वो अपने आप देखिएगा वो टाइट हो जाता है, ये इसकी खासियत है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो तीर्थ स्थान है आजकल वहां पे रेशमी धागे आना शुरू हो गए हैं, तो लोग जो है आजकल रेशमी धागों को बांधने का एक चलन लोगों ने सीख लिया है कि
और तो हम लोग भी जब बचपन में राखियां बनाते थे तो रेशम के धागे की वो आती थी लच्छियां
जी
और उससे
जी,
हम ब्रश करके बनाते थे।
बिल्कुल बिल्कुल तो उससे जो मतलब उसका जो चिकित्सकीय गुण जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो यही है कि वो टाइट हो जाता है, तो टाइट होने के बाद वो अपना जो काम करना है मतलब जो उसको प्रेशर देना है हमारी जो हाथ में जो नाड़ियां होती हैं उनको जो प्रेशर करने का काम है वो इन सूत के बने हुए जो मौली धागा होता है वो उसी से होता है।
अच्छा,
तो चिकित्सकीय पक्ष है कि यदि हम मौली धागे को अपने हाथ में बांधते हैं और घूसा भी बांधने का ऐसा है कि इतना होना चाहिए कि आप जो है मौली धागे को थोड़ा सा आप अपने हाथ में खसका सके, मतलब वो राउंड शेप में वो पूरा घूम जाए, तो इतना इतना ही टाइट बांधना है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना है। इससे जो नसें आपकी दबती हैं तो आपका जो वात है, पित्त है और कफ, ये तीनों को वो बैलेंस कर देता है।
अच्छा,
तो जब वात पित्त कफ बैलेंस होता है तो आपका जो मेंटल, आपकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो हर दृष्टि से देखा जाए तो वो बैलेंस रहती है और आपका स्वास्थ्य डेफिनेटली अच्छा होता है। बहुत बड़ा रीजन एक ये भी है इसका। और साथ ही साथ जो है कहते हैं कि जो मौली धागा होता है उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, इन तीनों की कृपा जो है वो उस धागे में बसती है। वैसे हम मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक सिंबॉल है जो प्रकृति का सिंबॉल है, प्रकृति में इन तीनों का वास माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश का। तो वो जो प्रकृति के जो तीनों गुण है वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने का, वो उसी से लिया गया है। और अच्छा, इसीलिए कहते हैं हम कि इसमें जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की जो ब्लेसिंग है वो इस धागे में हमेशा रहता है और बांधने से आपकी हर दृष्टि से सुरक्षा और स्वास्थ्य आपका हमेशा बना रहता है।
आपने शुरू में एक बात और कही थी कि आज के युवा ये नहीं जानते हैं कि इस धागे को कथा के समय पहन लिया उसके बाद उसको कैसे विसर्जित करना है, तो अगर राखियां भी इस पवित्र धागे से बंधी हुई हैं तो जनरली राखी आजकल तो भाई कोई चांदी की राखी पहन रहा है या जो राखियां होती हैं ढीली हुई, हाँ ढीली
वो एक दिन में उतार के रख देते हैं,
उतार करके एक तरफ रख दी जाती है, चलो सोने चांदी की है तो उनको सहेज कर रख दिया जाता है, बाकी धागे वाली बातों को तो कहीं भी इधर उधर फेंक दिया जाता है। लेकिन मौली धागे के साथ जो एक जुड़ी हुई है भावना,
भावना,
तो उसको विसर्जित करने का भी जो तरीका है वो भी आप हम चाहेंगे आप बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है और पहले भी ऐसा वो किया गया है कि कभी भी मौली धागे से कोई भी यदि आप धागा पहनते भी हैं तो भले आप कितने दिन बाद, महीने भर बाद या डेढ़ साल भर बाद आप जब उसको उतारें तो आप उसे खोलने, यदि खुलता है तो वेल एंड गुड और नहीं खुलता है तो आप उसे कैंची से काट लीजिए। और यदि आपको कहीं और नहीं जाना है तो आपके घर में कोई भी एक गमला होगा छोटा सा या मिट्टी ही होगी कहीं, तो आप उस मिट्टी में दबा दीजिए या आप उसे गमले में डाल दीजिए, क्योंकि नदी में डालने से नदी को प्रदूषित करने का के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन पहले के लोग जो थे वो फूलों को, जो घर में चढ़े हुए फूल हैं, रक्षा सूत्र हैं, इनको नदियों में विसर्जित किया करते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज की डेट में बदल रही है लोगों की, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप जो है जो भी इन मौली धागे से बनी हुई रक्षा सूत्र पहनते हैं या राखियां पहनते हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो उसे काट कर आपके घर में जो भी गमला हो या छोटा सा पॉट जिसमें थोड़ी भी मिट्टी कहीं पर भी आपको दिखे तो आप उसमें डाल दीजिए, वो धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। तो ये इसका एक साइंटिफिकली तरीका है उसे विसर्जित करने का।
ममता जी, वैज्ञानिक तरीका भी आपने बताया, चिकित्सकीय तरीका भी बताया, धार्मिक और भावनाओं से जुड़ा हुआ बातें भी बताई, तो सचमुच हमको इस मौली धागे का और इस राखी का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जिस तरह से हम तिरंगे झंडे का रखते हैं, कि छोटे से कागज में भी अगर बना हुआ झंडा होता है तो हम उसको सम्मान से ऊपर रखते हैं, यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं। उस तरह से हम अगर इस चीज को समझें और अपने युवाओं को, सारे भाइयों बहनों को ये बात हम पहुँचा पाए, हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, कुछ सहेजने की कोशिश कर पाएंगे।
कोशिश करें, बस वही हमारा भी उद्देश्य है कि हम चाह रहे हैं कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न को, आज देखिए पूरा विश्व जो है वो योग के प्रति बड़ा अवेयर है, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रही हैं कोरोना की वजह से कुछ ऐसे व्यायाम हैं जिनको करने से कहीं ना कहीं ऐसा पाया गया है कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको कोरोना की संभावना बहुत कम है। जब पूरा विश्व इस चीज को, हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहा है, तो हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि हमारी जो पौराणिक संस्कृति है वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब सही है, लेकिन ज्यादातर जो है 99% जो संस्कृतियां हैं वो 100% सही हैं, और उनको हमको वैज्ञानिक तथ्य भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि वो बेवजह उन रीतियों को बनाए हैं, उसका कुछ कारण है। परंपराएं जो हमारी हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उन परंपराओं को और उनको हमें आगे लेकर यदि हम नहीं जाएंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो उस चीज को जान ही नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी, और ना ही कभी उसे अपना पाएगी।
बिल्कुल,
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने इतनी अच्छी और विस्तृत जानकारी दी।
थैंक यू सो मच।
युग युग से रहेगा युगों तक प्यार बहन और भाई का, कहते हैं राखी के धागे, कहते हैं राखी के धागे।
अभी आपने सुना अर्पा रेडियो पर संज्ञा टंडन के साथ कार्यक्रम भेंट मुलाकात, जिसमें ममता जी ने मौली धागे को राखी से जोड़कर रिश्तों और परंपराओं के बारे में बताया।
ये है अर्पा रेडियो।